ये आकाशवाणी है। अब आप अभिषेक कपिल से समाचार सुनिए। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। नौवहन महानिदेशालय ने कहा है कि पाकिस्तान के झंडे वाले किसी भी जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब भारतीय ध्वज वाले जहाज भी पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर नहीं जाएंगे। ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक लागू किए गए हैं। ये निर्णय भारतीय परिसंपत्तियों, कार्गो और संबंधित बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्वजनिक तथा जहाजरानी क्षेत्र के हित में लिया गया है। इससे पहले भारत ने एक और सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में ये प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध में किसी भी प्रकार की छूट के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। भारत ने पाकिस्तान से आने वाली सभी डाक सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। संचार मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने हवाई और सड़क दोनों मार्गों से डाक और पार्सल सेवा को निलंबित करने का फैसला किया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, इनमें सिंधु जल संधि पर रोक लगाना, अटारी सीमा को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों को निकालना और राजनयिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि हालांकि कोई नहीं चाहता कि दक्षिण एशिया में व्यापक संघर्ष हो, लेकिन भारत को पहलगाम आतंकी हमले के बाद आत्मरक्षा में पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्थिरता के वातावरण में रहने से वंचित किया जा रहा है। सीमा पार से लगातार आतंकवादी गतिविधियों के कारण पर्यटकों को इस क्षेत्र में आने से रोका जा रहा है। भारत और अंगोला ने आज कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मनुएल गोंजाल्वेस लोरेंसो के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद समझौते किए गए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को अंगोला के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण में सहयोग करने में खुशी होगी।
मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत विवाद समाधान तंत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी बनाना चाहिए। नई दिल्ली में भारतीय मध्यस्थता संघ के शुभारंभ और राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि मध्यस्थता न्याय प्रदान करने का एक अनिवार्य अंग है जो देश के संविधान के मूल में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि 2016 से 2025 के बीच मध्यस्थता के जरिए 7,57,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता अधिनियम 2023 को लागू किया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज मुंबई में वेव शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की लाइव इवेंट इकोनॉमी आ स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इंपेरेटिव विषय पर श्वेत पत्र जारी किया। वेव सम्मेलन के साथ आज मुंबई में 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने संघीय चुनाव में बड़े बहुमत से जीत हासिल की है। 150 सीटों वाली प्रतिनिधि सभा में लेबर पार्टी ने 84 और लिबरल नेशनल पार्टी ने 33 सीटें जीत ली हैं। मतगणना अभी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंथनी अल्बनीज को ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच खेला जा रहा है। बेंगलुरु ने चेन्नई को जीत के 214 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 8वें ओवर में 2 विकेट पर 74 रन बना लिए हैं। प्रतियोगिता में कल पहला मैच कोलकाता में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा, जबकि दूसरा मैच धर्मशाला में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।